नमस्कार श्रोताओं, मैं सुरभि यादव और आप सुन रहे हैं छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी। आज हमारे साथ अमरवाड़ा विकासखंड से समाज सेवी एवं योग शिक्षक राजेश तिवारी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज के सेशन में हम योग पर बातचीत करेंगे एवं चर्चाएं करेंगे। तो सर्वप्रथम सर आपका मोबाइल वाणी पर स्वागत है एवं नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि जी, और आपने ये अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोबाइल वाणी की ओर से भी मैं धन्यवाद और मोबाइल वाणी को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा।
जी सर, सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह की आज की जनरेशन है जो जिम में जाती है बॉडी बिल्डिंग बनाती है, उन्हें लगता है कि बॉडी बनाने से आपकी जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, आप हेल्दी रहते हो। लेकिन जो हमारी प्राचीन में जो हमारे गुरु थे, वेद थे, वो योग पर ज्यादा फोकस किया करते थे। तो क्या हम अपनी नई जनरेशन को अगर हम वापस अपने योग पर लाना चाहें, योग के फायदे बताना चाहें, तो वो किस प्रकार संभव है?
बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता जी में कहा है, योग है कर्मशु कौशलम। जो भी व्यक्ति योग करता है उसकी जो कार्य कुशलता है, जिस कार्य में वो आगे बढ़ रहा है, उसमें निश्चित रूप से कुशलता मिलती है। और ये प्रैक्टिकल भी रहा है, जितने भी लोग योग से जुड़े हैं। महर्षि पतंजलि से यदि हम बात शुरू करते हैं तो महर्षि पतंजलि ने शुरुआत जो की थी, और आज हम देख रहे हैं पतंजलि योग केंद्र के माध्यम से भी हम स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी और देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने योग को जन जन तक पहुंचाया है। मैं ये कहना चाहूंगा हमारे युवाओं से कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले शारीरिक स्वस्थता से पहले है मानसिक स्वस्थता। यदि मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहते हैं, एकाग्रता होती है, तो निश्चित रूप से हमारी कार्य कुशलता में सफलता होती है। हम जिस कार्य में लगे रहते हैं, जिस कार्य में हम अपने उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते हैं, उसमें पहले मन है स्थिति को सुधारना है, मन को एकाग्र करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और ये संभव है योग से, प्राणायाम से। योग में यदि हम ये कहते हैं कि सिर्फ हम जिम के माध्यम से हम शरीर को स्वस्थ रखेंगे, तो शारीरिक रूप से उसमें आप देख सकते हैं कि शरीर को कैसे आप स्वस्थ रख रहे हैं, मसल्स बना रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन मानसिक रूप से और साथ में शरीर के विभिन्न अवयव जितने भी हैं, मानसिक से शारीरिक तक की जो यात्रा है, वो योग से संभव है। योग में सबसे पहले तो हम प्राणायाम पे यदि बात करते हैं, तो 8 तरह के प्राणायाम होते हैं। इन 8 प्राणायामों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इन 8 प्राणायाम के माध्यम से मानसिक रूप से हम स्वस्थ होते हैं, फिर धीरे धीरे करके शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। इसके अलावा योगिक जॉगिंग होता है, सूर्य नमस्कार होते हैं, आसन होते हैं, व्यायाम होते हैं, बहुत सारी चीजें योग में ऐसी हैं जो हमें मानसिक रूप से स्वस्थ करने के बाद शारीरिक रूप से भी स्वस्थ करती हैं। तो हमें योग से अवश्य जुड़ना चाहिए, युवाओं को योग से जुड़ना चाहिए, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सभी को योग से जुड़ना बहुत आवश्यक है।
जी सर, सर आपने जो भी बात कही है युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो युवा श्रोता है वो इस चीज़ को जरूर अमल करेंगे। अंत में मेरा एक प्रश्न यही है कि अभी जो जब हम युवाओं को बोलते हैं कि योग और जिम में, इन दोनों में क्या अंतर होता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जिम तो कर रहे हैं, योगा तो हो ही रहा है, मतलब काफ़ी कन्फ्यूज रहता है लोगों में कि
नहीं। योग में हम ये कहना चाहेंगे कि योग अपने स्थान पर एक अलग महत्व रखता है। योग से यदि आप जुड़ते हैं तो मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी दोनों तरह के उसमें व्यायाम होंगे। और जिम में आप सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रह पाएंगे, शारीरिक रूप से इस तरह से स्वस्थ रह पाएंगे कि मसल्स पे लोग ध्यान देते हैं युवा हमारे, और बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान देते हैं। लेकिन यदि योग से आप जुड़ते हैं तो आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे, हर तरह से स्वस्थ रहेंगे, और आप जिस क्षेत्र में जाएंगे उसमें आपकी कुशलता होगी। आप यदि व्यायाम कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, वो भी ठीक है। जिम भी यदि आप जाते हैं तो ठीक है, लेकिन जिम का एक टाइम टेबल आप अलग रखें और योग से भी जुड़ें। योग से यदि आप जुड़ेंगे तो आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं, जिम के कार्य को भी करने जा रहे हैं, तब वो पूर्णतः सार्थक हो पाएगा।
सर मेरा एक सवाल और भी ये भी था कि जिस तरह की जो अभी मतलब कि अभी बच्चे में पढ़ाई का लेवल जो बहुत है, कॉम्पिटिशन हाई रहता है, तो ऐसे में जो बच्चे हैं वो 8-8, 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, ऐसे में उनकी नींद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो कहा जाता है कि पहले आप नींद की पूर्ति कीजिए, लेकिन आज के व्यस्तता के जीवन में इतनी 8 घंटे की नींद पूरी करना एक इंसान के लिए संभव नहीं हो पाता। तो इसमें किस प्रकार का उपयोग किया जाए योग का कि हमारा जो है काम चलता रहे और शरीर भी तंदुरुस्त रहे, इसमें नींद हमारी डिस्टर्ब ना हो, खासतौर पर बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा है।
देखिए, नींद तो शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, नींद तो लेना ही है, लेकिन यदि किसी कारण से बच्चे लगातार व्यस्त हैं और नींद नहीं हो पा रही है, तो उस स्थिति में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 प्राणायाम हैं, और 8ों प्राणायाम के अलावा हम कुछ आसन भी हैं जिनमें एक आसन होता है शवासन। शवासन में शव की तरह आवृत्ति शरीर की बनती है और पूरा हम शरीर को इतना रिलैक्स करते हैं, पूरा इतना आराम देते हैं कि उसमें यदि रात्रि में अनिद्रा भी हुई है, नींद नहीं आ पाई है, तो उसमें नींद की पूर्ति हो जाती है। ऐसे और भी आसन हैं।
जी धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़े।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।
जी तो श्रोताओं, अभी आपने सुना राजेश तिवारी सर को, जिन्होंने स्वास्थ्य से संबंधित, योगा से संबंधित हमें जानकारी दी और बताया कि किस तरह की आज की जनरेशन जो है वो स्टडी के दौरान भी अपनी नींद को कमी ना महसूस करे, इसके लिए भी कोई आप योगा आसन करके अपने चीज को संभव बना सकते हैं। मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए मोबाइल वाणी के साथ। धन्यवाद।